ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण तीव्र पुरुषार्थियों का एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना। उसमें भी चार शब्दों का वर्णन आता है, संपूर्ण, संपन्न, कर्मातीत एवं बाप समान हमें बनना है। कई बार हम में से ही अनेक भाई बहने इन चारों को पर्यायवाची समझकर उसका एक ही अर्थ समझ लेते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यह चारों बातें अलग अलग हैं और इन चारों स्थितियों के लिए पुरुषार्थ भी अलग अलग है। हम सभी जानते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमारी पढ़ाई के चार सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा एवं ईश्वरीय सेवा। वास्तव में ये सभी चार स्थितियां इन्हीं चारों सब्जेक्ट के आधार पर ही बनती है। हमें चारों सब्जेक्ट पर समान रूप से अटेंशन देना होगा, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ईश्वरीय ज्ञान हमें संपूर्ण सत्यता का साक्षात्कार कराता है। रोज की मुरली हमारी बुद्धि को दिव्य बनाती है और यही दिव्य बुद्धि ही हम आत्माओं के प्रति परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत ही हमारी बुद्धि को पवित्र बनाती है। इसी श्रीमत से ही हम संपूर्ण बनते हैं। जितना जितना हम संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनते हैं उतना ही हम संपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ है ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई। ठीक इसी तरह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ है सहज राजयोग। योग से ही हमारा मन पवित्र बनता है, अर्थात हमारे संकल्प शुद्ध बनते जाते हैं। समान रूपी शुद्ध संकल्प ही हमें योग की गहरी अनुभूति कराता है। योग से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही हम अभूल बनते जाते हैं, अर्थात विकर्माजीत एवं विकर्मातीत बनते जाते हैं। यही कर्मातीत स्थिति की पहली सीढ़ी है। अतः जितना जितना हम योगी बनते जाएंगे उतना उतना कर्मातीत बनते जाएंगे। कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, अर्थात दिव्य गुणों की धारणा में संपन्नता ही वास्तविक संपन्नता है। इस धारणा की सब्जेक्ट से हमारे संस्कार शुद्ध अर्थात पवित्र बनते हैं, हमारे व्यवहार मधुर बन जाते हैं, जिसके कारण ही हमसे सभी आत्माएं संतुष्ट रहती है। ऐसी आत्मा निर्माण होती है, अर्थात विनम्रता की प्रतिमूर्ति होती है, वह सबको सम्मान देता है। ऐसी सर्व गुण संपन्न आत्माओं के लिए ही उदाहरण दिया जाता है कि फलों से संपन्न पेड़ सदा झुका हुआ रहता है। ऐसे ही बाप समान बनने का पुरुषार्थ का आधार है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट, ईश्वरीय सेवा में भी तीन भाग है। पहला है स्व सेवा, दूसरा है यज्ञ सेवा, तीसरा है विश्व सेवा। और इन्हीं तीनों में भी तीन तीन प्रकार है। स्व सेवा में यह अटेंशन देकर पुरुषार्थ करना है कि हमारा समय, संकल्प एवं श्वास व्यर्थ न जाए, वह सदा सफल करते रहें। यह यज्ञ सेवा में भी हमारा तन, मन एवं धन तीनों ही सफल हो, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसी प्रकार विश्व सेवा भी मनसा वाचा और कर्मणा तीनों रीति से करना है। इसीलिए इन चारों सब्जेक्ट पर हमें विशेष ध्यान देना होगा और इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जो इस प्रकार है, अक्सर करकर हम सभी की यह इच्छा रहती है कि हम ज्ञान की गहराई व योग की ऊंचाई को प्राप्त कर लें, परंतु उस गहराई व ऊंचाई तथा ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसकी लंबाई एवं चौड़ाई पर भी समझना एवं अटेंशन देना होगा। यह बाबा का रचा हुआ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। विगत 80 वर्षों से यह यज्ञ चलता ही आ रहा है। यह तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि सतयुग की पहली जनसंख्या की आत्माएं अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त न कर ले। इस प्रकार से यह समझना सरल हो जाता है कि ज्ञान की लंबाई है कि जब तक जीना है तब तक यह ज्ञान अमृत पीते रहना है, अर्थात पढ़ाई पढ़ते रहना है। इसकी चौड़ाई है सतो प्रधानता। यह ज्ञान तत्वों सहित सबको पावन बनाता जाता है एवं ज्ञान की गहराई है समाधान स्वरूप स्थिति, जिससे प्रश्न चित्त से ऊपर उठकर कर आत्मा प्रसन्न चित्त बन जाती है और वह हर्षित मुख रहती है, क्योंकि ज्ञान से हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, सभी प्रश्न और उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अतः हमें भी स्वयं को देखना है कि क्या हम सदा समाधान स्वरूप स्थिति में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार योग की भी लंबाई एवं चौड़ाई पर हमें ध्यान देना होगा। योग की लंबाई है निरंतरता, या बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटे का योग का चार्ट हो, यही योग की लंबाई है। और उसकी चौड़ाई है बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति, एक भी संबंध छूटना नहीं चाहिए। योग की लंबाई एवं चौड़ाई पर अटेंशन देंगे तभी योग की गहराई की अनुभूति कर सकेंगे। योग की गहराई कहें या ऊंचाई कहें, वह है निराकारी स्थिति। इस निराकारी स्थिति की 2 अवस्थाएं हैं। पहला है बीज रूप स्थिति एवं दूसरा है ज्वालामुखी स्थिति। जब तक बीज रूप स्थिति का अभ्यास नहीं है तब तक ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति करना संभव नहीं है। जैसे शिव बाबा इस कल्प वृक्ष बीज रूप है, वैसे हम आत्माएं अपने 84 जन्मों का बीज रूप हूं, क्योंकि मुझ आत्मा में अपने 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्माएं कल्प वृक्ष के बीज रूप नहीं हो सकते और न ही मास्टर कल्प वृक्ष के बीज रूप कहला सकते हैं। कल्प वृक्ष एक है तो उसका बीज भी एक ही शिव बाबा है और उस बीज से जड़ निकल सकता है, परंतु उसका मास्टर बीज कभी कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसा अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अभी अपने 84 जन्मों का पाठ पूरा करके अर्थात समेट कर परम धाम में अपने बीज रूप अवस्था में स्थित हैं। किस प्रकार बीज रूप अर्थात बाहर से सब समेट कर अब अंदर में अपनी निजी स्थिति में टिक जाना, इसी को ही डीप साइलेंस की स्थिति कहा जाता है। जबकि ज्वालामुखी स्थिति में परम प्यारे शिव बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में स्थित होकर कर बाबा से सर्व गुण व शक्तियों की किरणें चारों ओर ज्वालामुखी की भांति फैलाते रहने का अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार धारणा की लंबाई है संगम युग से लेकर कर त्रेता के अंत तक, क्योंकि यह धारणा 16 कला से धीरे धीरे 8 कला तक आने में अर्थात रजो प्रधान तक आने में 2 युग बीत जाते हैं। और इसकी चौड़ाई है सच्चे योगी जीवन के 4 स्तंभ, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण एवं सत्संग, क्योंकि इन्हीं 4 बातों की ही तो धारणा करनी होती है जिससे हम सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। धारणा की गहराई कहें या सबसे ऊंची धारणा यही है कि धरत परिये धर्म न छोड़िए, इसको कहा ही जाता है निर्विकारी स्थिति, यही धारणा की ऊंचाई है। ऐसे ही सेवा की लंबाई है बाबा की प्रत्यक्षता तक, विनाश ज्वाला प्रकट होने तक, और इसकी चौड़ाई है तन मन धन वचन कर्म एवं संबंध, इन सभी को सेवा में सफल करना, तथा सेवा की ऊंचाई है निमित्त भाव एवं निरअहंकारी स्थिति। कराने वाला करा रहा है, हुकुमी हुकुम चला रहा है। इसी प्रकार से अगर इन 4 सब्जेक्ट्स की सभी आयामों को समझते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही हम संपूर्णता संपन्नता बाप समान एवं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे।